तो चुनावी प्रचार जारी है। आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नजर आए और केंद्र को निशाने पर रखा। अखिलेश यादव ने कहा कि बदलाव की लहर चल रही है, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है, देश में एक अंडर करंट चल रहा है।
ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी, जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। चुनाव में दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी, मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है।
इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली, उनके वादे झूठे, इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई, लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। ये देश का चुनाव है, देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है, और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी।
और रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। रवीश, ये दोनों बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, साथ आए, लेकिन क्या बहुत देर से साथ आए? पहले चरण का मतदान अब परसों को एक दो दिन में ही है, क्या ये आने में साथ आने में अगर ये साथ पहले आ जाते तो ज्यादा फायदा होता विपक्ष को?
जी देखिए निधि, ये बिल्कुल सियासी रहस्य बना हुआ है कि आखिर इस बार ऐसा क्या रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण 8 सीटें हैं उन पर इन दोनों लोगों ने एक साथ ना तो कोई रोड शो किया, ना ही कोई रैली की, और ना ही ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक साथ में हैं। जबकि पश्चिमी यूपी की जो 8 सीटों पर जहां पर 19 तारीख को चुनाव है, उसमें से 4 सीटें पिछली बार जो है वो सपा बसपा जो गठबंधन है उन्होंने जीत हासिल की थी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन 4 सीट पर मजबूती से गठबंधन अभी भी लड़ रहा है। लेकिन इसमें दो थ्योरी जो है वो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये हो सकता है कि ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्योंकि 2017 के चुनाव में ये लोग एक साथ में थे और उस चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क ये लोग नहीं डाल पाए थे, तो इस चुनाव में हो सकता है कि चुनावी रणनीति इन्होंने बदली हो और ये सोचा हो कि अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे या एक साथ अगर हम दिखेंगे तो बीजेपी की तरफ से भी जो है वो वोटों का ध्रुवीकरण ज्यादा तेजी के साथ में हो सकता है। तो ये एक थ्योरी जो है ये हो सकती है। दूसरी बात, ये जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आरएलडी के साथ में गठबंधन हो चुका है और आरएलडी के साथ में गठबंधन होने से बीजेपी को जरूर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये मजबूती मिली है, तो हो सकता है कि फीडबैक पहले से हो कि यहाँ पर पश्चिमी यूपी में बीजेपी और आरएलडी के साथ में गठबंधन मजबूत है, इसके वजह से इन लोगों ने बहुत सारी कोशिश न की हो। लेकिन मेरी कई सारे प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से बात हुई जो कि ये चाह रहे थे, जिन्होंने माइक के सामने तो नहीं लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर एक रैली इस तरीके की हो जिसमें राहुल और अखिलेश जो है वो दिखें, उससे मतदाताओं पर एक फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये भी है निधि कि कई सारे जिलों में देखा गया, कई सारी सीटों पर यह देखा गया है कि गठबंधन तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो गया है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का गठजोड़ होता है वो जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता है। खासतौर पर कई सारी सीटों पर हम लोग गए, वहां पर ये पता चला कि अगर जो है वो कांग्रेस का कोई उम्मीदवार है तो समाजवादी पार्टी के लोग उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इसमें इस बात को दिखाने की कोशिश की गई हो या कार्यकर्ताओं को संकेत देने की कोशिश की गई हो, समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही कार्यकर्ताओं को, कि आप लोग जमीन पर एक दूसरे के साथ में मिलकर चुनाव लड़िए, आपके जो शीर्ष नेतृत्व है, नेता है, वो एक साथ है। तो ये हो सकता है कि एक सांकेतिक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में निधि इस तरीके की कोई नई बात नहीं की गई है। लोकतंत्र बचाने की बात राहुल गांधी की ओर से कही गई है, अखिलेश यादव ने ये कहा कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उनकी हवा बह रही है और इस बार पीडीएम जो है वो एनडीए को हराएगा। तो ये बहुत बार लोग ये बोल चुके हैं, ये सारे नेता, तो ऐसी कोई नई बात नहीं की। लेकिन हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये जरूर संकेत जा सकता है कि जो कार्यकर्ता अभी तक बिखरे हुए थे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, वो हो सकता है कि एक साथ में आ जाएं। लेकिन अब ये बस लग रहा है यही कि छूट चुकी है, इनको चुनाव प्रचार पहले से करना चाहिए, आक्रामक सियासी चुनाव प्रचार करना चाहिए, लेकिन अब ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों से चूक हुई है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए रवीश रंजन शुक्ला। और आपको ये बता दें कि आगे बढ़ लेते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शिवसागर में आज प्रचार किया, यहां पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। तो रामनवमी त्योहार के अवसर पर आज अयोध्या में राम मंदिर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामलला का सूर्य तिलक खास रहा। ठीक 11:58 से 12:02 बजे के बीच सूर्य की किरण सटीक तरीके से रामलला के ललाट माथे पर पड़ती रही। अयोध्या में खास तकनीक के जरिए सूर्य किरणों से रामलला का अभिषेक किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी थी, इसलिए जोरदार तैयारियां की गई। भगवान राम का सूर्य तिलक विज्ञान की तकनीक के जरिए किया गया, इसके लिए पहले ट्रायल भी किया गया था, तैयारियां की गई थी। जिस वक्त सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़ रही थी, उस वक्त मंदिर में कोई दूसरी रोशनी नहीं आ रही थी। ऐसे में सूर्य की रोशनी का उनके माथे पर पड़ता देखना एक भव्य नज़ारा था। करीब 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य किरणें पड़ी, और जैसे सूर्य किरणों से उन्हें तिलक लगाया गया हो, बड़ी तादाद में भक्तों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला बना रहा। अयोध्या में कई तरह की व्यवस्थाएं की गई, करीब 15 लाख पैकेट विशेष प्रसाद बनाया गया, दर्शन मार्ग पर धूप से बचने के लिए जर्मन हैंगर लगाए गए, धूप से पैर न जले लोगों के इसलिए मैट बिछाए गए, गर्मी बढ़ने से पीने के पानी का भी अलग से व्यवस्था की गई थी। और आज असम के नलबाड़ी के सभा के दौरान प्रधानमंत्री ने भी रामलला के सुराभिषेक का जिक्र किया।
प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के, आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।
तो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने हमारे सहयोगी तनिष पंजाबी को बताया है कि सूर्य तिलक की योजना पहले से बना ली गई थी।
ये सबसे ज्यादा बात हो रही थी इस बारे में कि रामनवमी के दिन जो है मस्तक पर सूर्य की किरण गिरेगी। आज जब ऐसा हो गया तो आपको क्या कहना है इसके बारे में?
वेल, देयर इज अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर दैट इट रिकर्स एवरी ईयर ऑन दिस डे। हम सभी ने, ट्रस्ट ने निर्णय लिया था कि वर्ष 2023 में रामलला का मंदिर पूरा हो जाएगा। आपने स्वयं अपने दर्शकों को दिखाया है कि रामलला गर्भगृह में है, सभी मंडप जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो पूरे हो गए हैं। अब प्रथम तल और द्वितीय तल का कार्य वर्तमान में है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि श्रद्धालु भी आ रहे हैं और हमें निर्माण कार्य भी पूरा करना है और हमारे लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से आप सहमत होंगे कि जो आने वाला एक वर्ष 2024 है, जिसमें हमें प्रथम तल और द्वितीय तल को पूर्ण करना है, वो चुनौती भरा तो है, लेकिन हम एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम उस दिशा में तिथियों के अनुसार बढ़ रहे हैं।
और रामनवमी के मौके पर आज अयोध्या में रामलला की 56 भोग परोसे गए। रामलला भोग परोसे गए पकवान लखनऊ की एक दुकान से आए और आज सूर्य तिलक से पहले श्रृंगार भोग और विशेष पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलों के बीच मुठभेड़ की कई कहानियां सामने आ रही हैं। इस मुठभेड़ में 29 नक्सली मार गिराए गए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। एनडीटीवी के पास इस ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं किस तरह से गोलियों की गूंज के बीच सुरक्षा बलों ने बहुत जाबाजी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको बता दें कि गुप्त रूप से एक विशेष इनपुट के आधार पर कांकेर के बिना गुंडा इलाके के जंगलों में बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी का ये बड़ा ऑपरेशन था जो बेहद कामयाब रहा। और इस मुठभेड़ में जख्मी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र से बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने।
रमेश जी कैसा लग रहा है अभी, तबीयत कैसी है अभी आपकी?
अभी ठीक है, तबीयत
ठीक लग रहा है,
पहले से बेटर है।
पहले से बेटर है। कुछ आपको रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि दो दिनों में क्या हुआ जीवन में, जो एनकाउंटर रहा था कैसे, क्या शुरू हुआ, क्या इनपुट मिली थी, कैसे आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पर?
सर्च अभियान में तो हर बार हम जा रहे थे, तो था कि मुठभेड़ कभी भी हो सकती है, कहीं भी इतनी बार जा रहे हैं, तो उसी रूटीन ड्यूटी पे हम गए थे, उसी आधार पे था, तो इनपुट था कि वहाँ प्रेजेंस है उनकी, 100% मतलब प्रेजेंस है। सर्च करते हुए पहुंचे पहाड़ी के ब्रिज, अपना कल्पर और हापटोला की पहाड़ी के बीच में, तो वहाँ जो आगे वाला बंदा था उसने देखा कि बंदे हैं वहाँ पर।
लगभग कितने दिखे होंगे बंदे आपने?
उसको तो दिखा, पर स्टार्टिंग में जैसे कोई दिखता तो एक आधा ही दिखता है, जो उनका ओपी बैठा रहता है। और वहाँ वैसे उस जगह का इनपुट भी था कि भाई यहाँ टेक SIP किया, PIB का सबका इनपुट था कि वहाँ नस्ली मूवमेंट है। उसी आधार पर उनको देख के हमने वहाँ घेराबंदी शुरू किया। घेरा करने के बाद वो लोग चारों तरफ से घेरने के बाद में तो इधर उधर भागेंगे, इधर उधर जैसे भागने की शुरू किया उन्होंने, उनके अब भागने के लिए कुछ तो करेंगे, फायर उन्होंने फायर शुरू किया। फायर करते इधर से जवाबी कार्रवाई में फिर हो गया शुरू, उतरी मैदान, मैदान जंग बन गया।
तो आप लोग तो शायद सोमवार की रात में निकल गए थे ना कल्पर के लिए?
15 तारीख को शाम को निकले थे।
15 की शाम को निकले?
जी जी, रात को निकले थे हम लोग।
तो रात को सबसे पहले कहाँ पहुँचे? थाना बेटिया के पास ही कुछ ब्रीफिंग हुई थी रात को 12-1 बजे।
मैं बेटिया थाना में ही था, मैं थाना बेटिया में, सीओबी थाना बेटिया में था मैं। वहाँ से टीम हमारी वहाँ से निकली थी पखान से, 2-3 जगह से आए थे, सारी टीम एक जगह से लॉन्च होकर देखी, इस पार से तैयार होकर फिर बाद में लॉन्च हुए हम लोग 15 तारीख को रात को। 16 तारीख को सवेरे जो एरिया था उसको 4-5 बजे तक हमने कॉर्डन कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि यहाँ नक्सली थे, वहाँ उनके मिलने की था कि यहाँ मिलेंगे, लेकिन वहाँ थे नहीं। उसे अगले वाले टेकरी को अपने सर्च किया तो वहाँ उनके टेल साइन मिले थे कि रास्ते बर्तन खाना खाने का बर्तन वर्तन ऐसे कुछ मिले थे, चावल के थे, उधर ताजा आदमी का था। उसी के आधार पर हमने थोड़ा आगे और सर्च किया तो वहाँ उनकी होती जनसंख्या, और पहले भी था ही उम्मीद कि डीवी सिंह जो मारा गया है उसके साथ मिलिट्री कंपनी के कुछ बंदे हैं, हमने वहाँ पर तो 10-15-20-25 आदमियों की सूचना थी पहले से।
तो ये थे हमारे जाबाज सुरक्षा के अधिकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम बात करते हैं रामनवमी की, क्योंकि ये त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और झारखंड के अलग अलग इलाकों में रामनवमी खास अंदाज में मनाई जाती है। इस बार राम मंदिर निर्माण, वहां पर रामलला का सूर्य तलक और चुनावों के मद्देनजर इसका जोर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। रांची में इसका अलग ही रंग दिख रहा है। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया वहां पर मौजूद हैं। विकास, वहां की रौनक ही अलग बताई जा रही है, आप वहां पर हैं, क्या वहां से खास आपने देखा?
ये देखिए, हम पिछले दो दिनों से लगातार बिहार और झारखंड के दौरे पर हैं और हमने हजारीबाग, जहां पर रामनवमी की जो यात्रा, शोभा यात्रा, जुलूस और जिसको कहते हैं मंगला यात्रा निकलती है, वो जन्मस्थली है। यहीं से रामनवमी के जुलूस की शुरुआत हुई 1987 में और उसके बाद धीरे धीरे ये जो शोभा यात्रा निकालने का जो प्रचलन था, जो परंपरा थी, वो पड़ी और उसके बाद वो देश के दूसरे हिस्सों में फैलती चली गई। आज जब राम मंदिर का भूमि पूजन के बाद शिलान्यास हो चुका, उद्घाटन हो चुका है, उस वक्त अब उत्साह जो है और ज्यादा चरम पर है। कल हम हजारीबाग इलाके में थे, हजारीबाग में इतनी जबरदस्त उत्साह था, पूरी जो गलियां थी वो भगवा रंग की झंडियों से पटी हुई थी, लोगों के घरों पर, बाजारों में जगह जगह भगवा झंडे लगे हुए थे और जगह जगह पर, कल मंगलवार था, मंगला आरती लेकर, झंडियां लेकर और युवकों के हुजूम सड़कों पर निकल रहे थे। आज की जो छटा है वो निश्चित रूप से शहर के अंदरूनी इलाकों में जहां पर शोभा यात्रा निकलती है वहां पर देखते ही बनती है। लोग सड़कों पर होते हैं, शाम को ऐसा लगता है कि पूरा शहर उमड़कर उन इलाकों पर आ गया है जहां से शोभा यात्रा निकलनी है या रामनवमी से जुड़ी हुई झांकियां निकलनी है। तो खास तौर पर हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर रामनवमी से जुड़ी हुई शोभा यात्रा, जुलूस और इनसे जुड़े हुए जो मंगला आरतियां निकलती हैं वो बेहद ही दिलचस्प होती हैं, बहुत रंगारंग होती हैं और जो युवक होते हैं वो उत्साह से लबरेज होते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन दृश्यों के लिए विकास। जिस तरह से पूरी रौनक दिख रही है रामनवमी त्यौहार की जमशेदपुर में, एक छोटा सा ब्रेक लेते, तुरंत लौटेंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और अब चुनावों से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा चुनावों के पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। पहले दौर में शुक्रवार को 102 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के प्रस्तावित कूच बिहार दौरे पर रोक लगा दी। राज्यपाल सीवी आनंद 18 और 19 अप्रैल को कूच बिहार जाने वाले थे, चुनाव आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता के खिलाफ बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज गुजरात के भरूच में दौरा किया, रैली की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चैत्रा बसावा के समर्थन में रोड शो किया। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से दो, भरूच और भावनगर पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस बाकी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें गरीब परिवारों को रसोई गैस के 10 सिलेंडर मुफ्त देने का वायदा किया गया है। कर्नाटक बीजेपी के नेता जगदीश शेट्टार ने बेलगावी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। मेघालय में तुरा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम भेजी जा रही है। मेघालय की दो लोकसभा सीटों तुरा और शिलांग के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार के औरंगाबाद में आज पुलिस ने आरजेडी उम्मीदवार के कार्यालय पर छापा मारकर 50,000 कैश बरामद किया। इस दौरान पुलिस को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी के नेता हर जगह जाकर ये क्यों कह रहे हैं कि वो संविधान बदलने वाले हैं। जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण का क्या होगा, सबके वोट के अधिकार का क्या होगा, इसका जवाब दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अगरतला में रैली की और इस मौके पर पश्चिम त्रिपुरा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार विप्लव कुमार देव ने प्रधानमंत्री को गदा भेंट किया। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस दौरान सिद्धी में सुरक्षा कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को रामनवमी के मौके पर हिमाचल प्रदेश के चिंतापूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश के लोगों को धर्म के प्रति जागृत किया है। आज रामनवमी के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत की है। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा है कि राम राज्य की कल्पना को जो भी देखना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर देखें। मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज खजियार और डलहौजी में प्रचार किया। वो भरमौर में 1400 साल पुराने 84 मंदिर भी गए। राष्ट्रीय जनता दल को झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद ने टिकट बांटने में मनमानी का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आईसीयू में पड़ी और लोग इन्हें ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं है। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन करके 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन आज हालात अलग हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने शिवगंगा में कहा है कि मेरा मानना है कि 10 साल से ज्यादा कोई सरकार नहीं रहनी चाहिए, बदलाव जरूरी है। चिदम्बरम ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ 420-430 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 25 सीटें तमिलनाडु से हैं। अगर वो तमिलनाडु में सभी 25 सीटों पर हार गए तो 400 सीटें कैसे जीत सकते हैं। बीजू जनता दल ने उड़ीसा के विधानसभा चुनावों के लिए पांचवी लिस्ट जारी कर दिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कांटाबंजी से चुनाव लड़ेंगे। आम चुनाव में मतदान बढ़ाने के इरादे से चुनाव आयोग अलग अलग तरीके अपना रहा है। इसी के तहत वोटर कुंजाचन को कोट्टायम जिला प्रशासन ने शुभंकर बनाया है। केरल के सुपरस्टार ममूटी का सुपरहिट किरदार है कोट्टायम कुंजाचन, जिसका इस्तेमाल वोटरों को जागरूक बनाने के लिए किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो अपने राज्य में एनआरसी और सीए को लागू नहीं होने देंगी। असम के सिलचर में एक सभा के दौरान उन्होंने लोगों के साथ लोक नृत्य भी किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा कल तुरा में लोगों के साथ थिरकने से खुद को नहीं रोक सके। तुरा से अगाथा संगमा एनपीपी के उम्मीदवार।